दूसरी चीज इस हदीस से देखिएगा जो मालूम होगी वो क्या है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकामे महमूद पर फायज होने के बावजूद बिला इजाजत सिफारिश नहीं करेंगे बल्कि इज़्ने शिफात हासिल करने के लिए नामालूम मुद्दत तक अल्लाह ताला के हजूर सजदे में पड़े रहेंगे, अल्लाह ताला की हमदो सना करेंगे और अल्लाह ताला जब चाहेंगे इजाज़त अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला ने रसूल अकरम को मुकाम महमूद अता फरमाने का वादा दुनिया ही में कर लिया था, इसके बावजूद आपको सिफारिश करने से पहले इजाज़त हासिल करनी पड़ेगी। इस सूरत हाल में शख्स का बड़ा धोखेबाज और कौन होगा जो ये दावा करे कि मैं क़यामत के दिन अपने मुरीदों की सिफारिश करूँगा या मैं अपने मुतवस्सिलीन, मुतवस्सिल किसको कहते हैं जो किसी का वसीला पकड़े यानी वही मुरीद जो होते हैं, मैं अपने मुतवस्सिलीन को अल्लाह से बख्शवा लूँगा या अपने दामन गिरफ्तों को, दामन गिरफ्तों को जिन्होंने मेरे दामन पकड़े हुए हैं, गिरफ्त जो है ना ये फारसी का लफ्ज़ है पकड़ना, यानी जिन्होंने मेरे दामन पकड़े हुए हैं इनको जन्नत में ले जाऊंगा और इस शख्स से ज़्यादा फरेब खुर्दा कौन होगा जो अपने मुर्शद शफी के आस्थाने पर नजरानों के ढेर लगाकर ये समझ बैठे कि मेरी शिफात का इंतज़ाम तो पक्का हो गया। इजाज़त नबी को भी मांगनी है, देखे ना जब आदम के पास जा रहे हैं लोग, इब्राहिम के पास जा रहे हैं और मूसा के पास जा रहे हैं तो अल्लाह के नबी कहते पीछे हटो लाओ मैं करता हूँ, जब तक उनकी बारी नहीं आई अल्लाह के नबी सजदे में होंगे। और एक और हदीस से भी ये बात मिलती है कि अल्लाह के नबी अल्लाह के आगे सजदे में जाएंगे और जब तक अल्लाह चाहेगा वो सजदे में रहेंगे, तो कुर्ब मिलता है सजदों से। तो ये सिफारिश की इजाज़त अगर अल्लाह के नबी को मिली तो वो किन वजूहात से मिली कि वो खुद अमल साले करने वाले थे। तीसरी बात देखिएगा हदीस शिफात से तीसरी बात ये मालूम होती है कि अल्लाह ताला रसूल अकरम को लोगों की लामहदूद तादाद जहन्नुम से निकालने की इजाज़त नहीं देंगे बल्कि एक हद मुकर्रर कर दी जाएगी कि आप सिर्फ ईमान के फलां दर्जे वाले लोगों को जहन्नुम से निकाल सकते हैं। गोया आपकी सिफारिश के नतीजे में सिर्फ वही शख्स जहन्नुम से निकलेगा जिसे अल्लाह ताला निकालने की इजाज़त देंगे। अब लम्हा भर के लिए फ़र्ज़ कीजिए कि अल्लाह ताला शेख अब्दुल कादर जेलानी साहब को सिफारिश की इजाज़त दे देते हैं और 50 या 100 मरीदों के हक में इनकी सिफारिश कबूल कर लेते हैं, क्या ये मुमकिन होगा कि शेख अब्दुल कादर जेलानी साहब ये ज़िद कर बैठें, या अल्लाह मेरे मुरीद तो लाखों की तादाद में हैं मैं तो सबको निकाल के लाऊंगा, या सैयद अली हजवेरी अल्लाह ताला की अदालत में अड़ बैठें कि मैंने अपने हज़ारों मुरीदों से वादा कर रखा है लिहाजा इन सब को जहन्नुम से निकालूंगा। ऐसा तसव्वुर करना और सोचना अल्लाह अज़्ज़ा वजल और इसके रसूल अकरम की इतनी बड़ी गुस्ताखी है कि इससे ज़्यादा गुस्ताखी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, समझ गए। तो तीसरा कोड लिख लें, लिमिट मुकर्रर है, कोटा मुकर्रर है। अगर बिलफर्ज अल्लाह हर बुजुर्ग जिससे लोग उम्मीद रखते हैं दे दे इजाज़त, और देगा अल्लाह, हो सकता है दे दे, मैं आप कुछ नहीं कह सकते, हम उनके असल नहीं जानते, लेकिन उन्होंने लाखों में से 20 लोगों की करनी है तो क्या आप और मैं उस 20 में आते हैं? कोई वे आउट ही नहीं बनता कि आप कह दें कि जी मेरा नाम ज़रूर निकल जाएगा। देखिए दुनिया में मेरिट होता है, तो जैसे मिसाल है मेडिकल कॉलेज में इस साल हमने 50 बच्चों को लेना, तो एप्लीकेशंस आती हैं 2000, तो दिल धड़क रहा होता, तो क्या आप और मैं इतने बड़े सौदे को, चले दुनिया में मेडिकल नहीं मिलेगा कुछ भी कर लेंगे, क्या अपनी आखिरत को हम इतने बड़े रिस्क में रख सकते हैं? या वो हज़रत अली का जुमला फिर याद आ गया, एक काफिर ने आकर उनसे बहस की, कहने लगा तुम मुसलमान कितने ना समझो, अनदेखी आखिरत जिसने पता नहीं आना भी है कि नहीं, उसकी उम्मीद पे इतनी मज़े की दुनिया के मज़े छोड़ रहे हो, लज्जतें ऐश मज़े। अब हम होते हैं हम कहते वाह सो स्टूपिड सो फुलिश, हम कितने बेवकूफ़, सब इंजॉय कर रहे हैं मेरे पास इंजॉयमेंट नहीं, और स्पेशली जब से कुरान पढ़ लिए मेरी ज़िंदगी से तो इंजॉयमेंट सारी निकल गई। नहीं, दे वर नॉट एम्बेरस्ड मुस्लिम। हज़रत अली जैसे बंदे वो थे जिनको अल्लाह की बात पर यकीन था, कहने लगे मेरे भाई सुनो बिलफर्ज तुम जो कहते हो वो ठीक है, और वो क्या कहते थे काफिर, कोई आखरत नहीं, मौज मस्ती ऐश करो मर के मट्टी, बिलफर्ज तुम्हारी बात ठीक हो गई यानी क्यामत ना आई जन्नत जहन्नम ना हुई तो मेरा क्या बिगड़ा, अगर मैंने दुनिया में कोई अच्छा काम किया तो मुझे सुकून मिला खुशी मिली और मेरी वजह से किसी को फ़ायदा हो गया, ठीक है तुम कहते हो कि मैंने इंजॉय नहीं किया लेकिन नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन तुम सोचो अगर मेरा अकीदा ठीक हो गया तो तुम्हारे साथ कल क्या बनेगा? इतना मुदलल, और वो कहता है सोल सर्चिंग क्वेश्चन था कि वो शख्स कहाँ के रह गया और मुसलमान हो गया। क्या हम सिर्फ इसको एक चांस के ऊपर रख देंगे? देखिए दुनिया में आपने देखा होगा कंफर्म टिकट, चांस का टिकट। अब तो नहीं होता, ये होता होगा अभी भी, कंफर्मेशन मिलती है तो फिर ही होता है। क्या आप एयरपोर्ट पे सामान उठाकर चले जाते हैं कि वी गॉट द टिकट, मे बी वी विल गेट और नॉट? आप हैंड फ्री हैं, आपको इधर से उधर जाना है, वो कहते हैं आ जाए, लास्ट मोमेंट डील मिल सकती है, इफ़ समवन विल नॉट शोड अप वी कैन गिव यू ट्राइज, हो सकता है ना भी हो तो इट्स हायर है। लेकिन क्या आखरत को हमने एक चांस के टिकट पे रखा हुआ? ये जुमला लिखे, क्या मेरी जन्नत कन्फर्म्ड है कि चांस पे? बड़ी अदा से कंधे उचका के लोग कहते इट्स ओके, लेट्स सी, देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? आग में जाना देखा जाएगा, पुल सरात पे तड़पना देखा जाएगा, कब्र के अंदर मुश्किल में देखा जाएगा। इतने लावालीपन से, इतनी बड़ी हकीकत का इनकार। आप अपने कॉलेज गोइंग बच्चे से कहेंगे बेटा पढ़ लो, इम्तिहान आने वाले हैं, कहेगा मामा देखा जाएगा, मैं जा रहा हूँ दोस्तों में फ्रेंड, भाई कल अब क्या मसला, पढ़ लो, ओ मामा आज शादी में जाने, इट्स ओके, देखा जाएगा। दुनिया में देखा जाता, बिजली का बिल आ जाए आपको, कोई कहता पे करो, आप कहते देखा जाएगा क्या होगा, करके तो देखिए ये मनमानियाँ। दुनिया में सिर्फ एक महीना मनमानी कर लें, आपका अगला महीना वर्स्ट हो जाएगा। खा रहे खा रहे खा रहे, भाई क्या हो गया आपको, देखें अपने आप को, आपका वेट गेन होगा, आपको शुगर हो जाएगी, यह है तो वो देखा जाएगा। हाउ इज इट पॉसिबल? और यकीन करें कि आज तो मुस्लिम एटीट्यूड मुझे दिखता है देखा जाएगा, नॉन मुस्लिम्स से तो बंदे को कोई इतनी उम्मीदें भी नहीं होती। अल्लाह की सारी उम्मीदें नबी की उम्मत से। और एक जुमला जो कई साल से किसी मवाहिद से सुना हुआ, कहते हैं कि अगर मुसलमानों का रब है ना सिर्फ, यानी हम कहते हैं हमारा तो सिर्फ रब भी है, तो रब की भी तो सिर्फ उम्मत मुस्लिमा ही है, बाकी तो उसको मानता है कोई, किसी तरह मानता है कोई, जीजिस को ले आता है बीच में। देखा जाए तो रब की भी तो सारी उम्मीदें उम्मत मुस्लिमा से ही है ना, क्योंकि कुन तुम खैर उम्मत अख़रजत लिन्नास। तो ये सारी मस्तियाँ निकल जाती हैं, सच्ची बातें निकल जाती हैं। अकेले में बैठ जाएं आप कागज़ कलम लेकर और सोचें पिछली ज़िंदगी के सारे वाक़यात वन बाय वन। मुश्किलें भी आती हैं, आई होंगी आप पे भी, बीमारियाँ भी आती हैं, आप सब में से भी किसी को बड़ी बीमारी से गुजरना पड़ा होगा, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव होते हैं। पूछिए खुद से कौन मेरे काम आया था, किसने मुझे उस मुश्किल से निकाला, किसने मुझे उस बीमारी के वक्त पे थामा, किसने उन गुर्बत के लम्हात में मेरे घर में रोटी भेजी, वही वहाँ भी काम आएगा। वो कहते हैं ना कि वही पत्ते हवा देने लगे जिन पे तकिया था, ये भी आप लिख लीजिए शिफात के लिए। जब कुछ लोगों के साथ क्यामत के दिन सिफारिश की उम्मीद पर ये होगा कि वही पत्ते हवा देने लगेंगे जिन पे तकिया था। सूरत बकरा दूसरे पारे का तीसरा रुकू है, अगर आप जाके घर में चेक करेंगे ना, जहाँ से वो किस्सा ख़त्म होता है ना, सयकूल सुफहा मिनन्नास, तब्दीली किबला का किस्सा, दो रुकू पे तो वही चलता है, फ़ज़कुरूनी अज़्कुरकुम वस्तईन बिस्सब्री वस्सलाह। उस रुकू के एंड पे आयतें आती हैं वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और इसके बरक्स जो काफिर थे मुशरिक थे वहाँ वो दोनों खड़े होंगे और वो क्या कहेंगे, वलव अन्ना लना करतन फनतबर्रौ मिन्हुम कमा तबर्रौ मिन्ना। पीर मुरीद और जो मुशरिक जो उनके मानने वाले थे खड़े होंगे, कहेंगे एक दफ़ा अल्लाह वापस दे दे, आज ये जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमसे बेनियाज हैं क्योंकि वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते, कल हमें मौका मिल जाए हम दुनिया में जाके इनसे इससे भी ज़्यादा बेनियाज हो जाए। लेकिन अल्लाह कहता नहीं, फतकत्तत बिहिम अलअसबाब, सारे रिश्ते नाते उम्मीदें टूट जाएंगी। आज जिंदा, आज मौजूद है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ज़रूरत है इस बात की कि आखरत को पहले कन्फर्म कर लें। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कर लें, टाइम मैनेजमेंट का एक बेसिक असूल है। बहुत सारे लोग कहते हैं इतने कामों के बीच में भी कोई बड़ा मुतमईन हो और किसी के पास कुछ भी नहीं तो नहीं, तो उसकी वजह क्या है? तो उसका एक असूल देते हैं स्पेशलिस्ट, वो क्या कहते हैं, कहते हैं कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड अर्जेंट थिंग्स आप कर लें, फिर इच्छी बिच्छी इधर उधर जो होता है वो कर लें, जो नहीं होता ना करें, आप रिलैक्स रहेंगे। मसलन मिसाल देते हैं कि रात को दावत है आपके घर में। देखिए हमारी दावतों में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एक सालन चिकन का, एक चावल और कोई दो तीन बेसिक चीज़ें, आप वो कर लें। उसके बाद वक्त मिला चटनी बना लें, वक्त मिला सलाद बना लें, दिल चाहा तो एक और सालन बना लें, जो हमें मिलता ही रहता है और हम रात तक 8-10 खाने बना लेते हैं और फिर पाँव बांध के रात को सोते हैं। है ना हमारा ये हाल। अब कोई बंदा रात दावत है, ना चावल भीगे, ना सालन बना, ना रोटी का कोई इंतजाम, और ये रशियन सैलड, ये इटालियन सैलड, ये चाइनीज सैलड, ये फलां है, ये फलां है, तो फिर हमारे जैसे लोग जाके तो रोएंगे ना, आप कहेंगे खाना तो लाए, वो किधर है, वो कभी नहीं मानते कि ये भी खाना है। अब वो आखिरी वक्त उनका जो घंटा रह जाएगा वो कितना स्ट्रगल वाला होगा, क्योंकि मेन चीज़ कोई नहीं है। तो आपके मेरी ज़िंदगी का एक बेसिक असूल देखिए, इट्स वेरी सिंपल, हम मत सोचें कि हम जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे। मैं ये आपको एक शॉर्टकट देने लगी हूँ सिफारिश से बचने का। आप अपनी जिन दोस्तों को, अपने फैमिली फ्रेंड साथी, जो सर्कल है आपका, हमें सारे का फ़र्क होगा। आप देखते हैं कुछ लोग बहुत ही दूर है दीन से, कुछ ज़रा बीच में, कुछ आखिर है, क्या दें? बिल्कुल वही है जो ट्रैफिक का रूल है। फोर लेन्स होती है ना, एक आखिरी लेन है, एक पहली है। पहली के लिए एग्जिट लेना बहुत आसान है, चौथे को पहले इधर आना है, फिर इधर आना है, फिर जाना है, उसके लिए टाइम मुश्किल है। आप दीन की तरफ इंक्लाइंट, जो पहले से दीन का टेस्ट चख चुके, उनको जो दीन का रंग दिखाए ना, वो थोड़ा सा हाई लेवल का दिखाएं कि बेटा ठीक है नमाज पढ़ते हैं पर मस्जिद में जाके पढ़ा करें, चलें ठीक है बे आप ये करते हैं, लेकिन इससे बेहतर तो कीजिए, आप जाते हैं जुम्मे पे मुझे पता है, लेकिन आप 10 मिनट पहले जाके बैठे। बात समझ गए ना, जिसका तो रुख बदल चुका है, आप उसको पहले लेकर आए। लेकिन जो बेचारा अभी आखिरी कोने में खड़ा है, जिसका तो दिल पहले ही कांप रहा है कि अभी तो रिएक्शन ही बड़ा होना है, क्योंकि आप एक लेन छोड़ के दूसरी में आते हैं, पीछे से टकरा सकती है गाड़ी। सबसे बड़ा खतरा क्या होता है ड्राइवर को, जब लेन चेंज होती है। ये मेरी आपकी ज़िंदगी की ये सोगल लेन चेंज हो रही है, हमारे अपने भी खफा हमसे और बेगाने भी नाखुश हमसे, वजह के ना हमें वो कबूल करते हैं और ना हमें ये कबूल करते हैं। हम आते हैं इधर फंसे हुए हैं, हम दीनदारों के पास जाते हैं, वो कहते हैं नहीं क्लास शुरू कर दिए, कुरान पढ़ने लगे हैं, वो हो गया, वो कहते अच्छा लेकिन लग तो नहीं रहा, अच्छा की हो गया, अभी अंदर चेंज हो रहा है, बाहर हो जाएगा बाद में। जैसे बात वह कहीं जाती है ना, तो नए नए स्टूडेंट्स हैं, तो वो कहती हैं जब से कुरान पढ़ा हमारे साथी ने हमसे परेशान है, और वो कहते तुम बड़ी बदल गई। तो मैं को देखती हूँ, कहती मुझे तो अब कहीं से नहीं बदली भी लग रही, यानी दूसरे लोग हमारी थोड़ी सी चेंज को समझने लग जाते हैं कि हम बहुत बदल गए। ठीक है, अब जो बिल्कुल नहीं बदले हुए, आप उनको ये कहें मेरी बहन मेरे भाई गुजारा तो कर लो, दाल दलिया तो कर लो दीन के नाम पे, अकीदा चेक करवा लो अपना, जो डॉक्टर के पास जाके ब्लड टेस्ट कराओ, देखो कि कैंसर तो नहीं है, कहीं शुगर तो नहीं हो गई, कहीं ब्लड प्रेशर तो नहीं, मेन बीमारियों से तो बच जाओ। और आप देखिए शिर्क की मौजूदगी में कोई सिफारिश नहीं, ये तो आप बड़ा बड़ा लिख के काट दें। शिर्क आपकी ज़िंदगी में आ गया, आपको अब्दुल कादर जिलानी छोड़ दीजिए, मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश भी नहीं काम देगी, वो करेंगे भी नहीं, नहीं करेंगे। गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड लॉ है, अल्लाह ने कुरान में एक नहीं 20 बार कह दिया कि अल्लाह मुशरिक की तो तौबा कबूल नहीं करेगा। ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी है, मौके हैं, आप आज तौबा कीजिए। सारी ज़िंदगी आप किसी कब्र पे सर रख के बैठे हुए थे, आज अल्लाह ने हिदायत दे दी, माफ़ी मांग ली, ऐसे हो जाएंगे जैसे कभी कुछ किया नहीं। बेनमाजी, अल्लाह जितनी सज़ाओं से गुजार के चाहे, पहली बात मुशरिक नथिंग, दूसरा अमल जो दीन में होता है ना बिदअत होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कहा नहीं किया नहीं दीन के नाम पे, जो हम मोहब्बतों में आके कर लें। ये कह लीजिए कि गवर्नमेंट लेवल की मस्तियाँ, या ऐसी कि हर मुल्क के कई रूल्स और कई उसके डिसोबेंस होती है ना। मिसाल आप कोई शहर में ट्रैफिक रूल्स तोड़ ले, इट्स ओके, हमारे यहाँ तो काफ़ी कुछ इट्स ओके है, लेकिन चले भाई ट्रैफिक रूल तोड़ा, इट्स ओके। कोई अपने घर के बाहर कचरा फेंक दे, जुर्म तो ये भी है लेकिन ओके। बट कोई जाके तो वजीर आजम के नाम पे कोई चीज़ पर्चा लिख के बांट दे, कोई जाए और जाके सदर साहब के तरफ से कोई ऑर्डिनेंस जारी कर दे, तो वो फिर इधर ओके नहीं होता, वो फिर जेल में भेजते हैं। दीन के बेसिक्स के ऊपर कोई कमी बेशी करना, ये लॉ है ऊपर का, ये अल्लाह से मामला है, मैं आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, ना वली कर सकते ना पैगंबर कर सकते हैं। मिसालें मौजूद हैं, हज़रत इब्राहिम का बाप, 2-3 जगह जाइए पढ़िए, सूरत तौबा में डिटेल हैं, सूरत मुमतहिना में डिटेल्स हैं, सूरत इब्राहिम में तस्करा है, नहीं कर सकेंगे इब्राहिम कुछ भी, क्यों? बाप मुशरिक था। हज़रत नूह का बेटा डूब रहा है, सूरत हूद की जाके पढ़िए आते हैं, बाप की आंखों के सामने बेटा डूब गया, नूह कुछ ना कर सके। और जाके पढ़ लीजिए लूत अलैहिस्सलाम की बीवी और नूह की बीवी दोनों पीछे रह गईं, कानत मिनल गाविरीन, कुछ नहीं कर सके, नबी थे, 950 साल की दीन की खिदमत के बाद अपने एक बेटे को डूबने से नहीं बचा सके क्योंकि बेटा मुशरिक था। तो मुशरिक और बिदती, ये दो चीज़ें ऐसी हैं, जानबूझकर कोई ये काम कर रहा है तो उसकी तो सिफारिश नहीं है। उसके बाद जो बातें हैं, नमाजें, मतलब नमाज की कमी बेशी है, कबीरा गुनाहों में से ये गुनाह होगा नमाज छोड़ना, जिना, फहाशी, बदकारी और दीन के बेसिक्स को ना मानना, ये बड़े बड़े जुर्म हैं। वो मालिक है और हम उसके बंदे हैं जिसके साथ जो मामला करना चाहे। अमूमी तौर पे जो मुझे समझ आई है अल्लाह ताला की सुन्नत के, जिसका दिल अच्छा होता है ना, मतलब बंदा दिल से अच्छा है, शिर्क नहीं, अल्लाह से प्यार करता है, लेकिन नमाज़ें नहीं पढ़ता। कई लोग होते हैं, कई सिस्टर्स कहती हैं हमारे हस्बैंड बड़े नेक हैं बस नमाज़ ही नहीं पढ़ते। वो मतलब ये उनका कहता है कि हुकूकुल इबाद में बड़े अच्छे हैं, तो लोगों को भी वो दीन का ट्री नहीं पता कि मामला तो जाके ऊपर आते हैं तो रूट्स के अंदर तो अल्लाह से ताल्लुक बिगड़ा हुआ है, लेकिन अल्लाह मालिक है। जिस अमल में कमी होगी ना, अल्लाह चाहे दुनिया में बीमार कर दे, बच्चों के दुखों में डाल दे, परेशानियों में डाल दे, पाक कर देगा, और चाहे तो अल्लाह किसी की सिफारिश से पाक करा दे। लेकिन जो एक हदीस मैंने आज से कई साल पहले पढ़ी थी कि अगर अल्लाह पकड़ने पे आ जाए तो एक फ़र्ज नमाज का एक सजदा छोड़ने पे 80 हुक्बे जहन्नुम में जला दे। ये तफसीर इब्ने कसीर में आप रिवायत पढ़ सकते हैं। 80 हुक्बे जहन्नुम में एक रकत नहीं, हाफ रकत, क्योंकि दो सजदों से एक रकत बनती है। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी, मल हुक्बा, हुक्बा क्या होता है? और कुरान में भी लफ्ज़ है, ला बेसिन अफीहा अख़्क़ाबा, सूरत अम्मा या तसालूनी है ना, कि कई मुद्दतें उसमें पड़े रहेंगे। तो आपने फरमाया कि आखरत का एक हुक्बा दुनिया के 80 सालों के बराबर होगा। अब एक देखिए, 80 हुक्बे, 80 × 80, 6400 ईयर्स तक अगर फ़र्द जुर्म साबित हो गई ना नमाजों पे, तो सिर्फ आधी रकत पे बंदा 64000 ईयर जहन्नुम में जलाया जाएगा। वहाँ तो टाइम एंड ड्यूरेशन से बंदा वैसे ही पाक है, तो ये उस पे है। लेकिन आप अपने लिए हमेशा ये सोचा करें कि मैंने अपने आप को किसी रिस्क पे नहीं रखना, ठीक है। फिर चौथी चीज़ देखिए कि सिफारिश का फ़ायदा सिर्फ अकीदा तौहीद पर मरने वालों को होगा। जब जहन्नुम से सारे मवाहिद निकल आएंगे तो रसूल अकरम अज़ ख़ुद की सिफारिश से रुक जाएंगे और फरमाएंगे, या अल्लाह, अब तो जहन्नुम में वही लोग रह गए जिन्हें कुरान ने रोक दिया है, यानी काफिर और मुशरिक। और ये सूरत हिजर की शुरू की आयत है, रुबमा यवद्दुल्लज़ीन कफरु लौ कानू मुस्लिमीन। उसकी तफसीर में आप ये मौजू सुन सकते हैं। जहन्नम में से जब मुवाहिदीन को निकाला जा रहा होगा, कुछ को उनकी सजाएं भुगता कर जो उन्होंने ज़िंदगी में जुर्म किए, कुछ को सिफारिश के ज़रिए, तो जो वहाँ जहन्नम में मुशरिक और फासिक फाजिर रह जाएंगे, वो देख रहे हैं ये भी गया जेल से निकला। आप देखें ना, कई साल से जेल में इकट्ठे थे, दोस्तियाँ हो गई, आज एक के ऑर्डिनेंस आ गए, कल दूसरे के, तीसरे के, वो देख रहे हैं जिसके ऑर्डिनेंस आते हैं उसमें एक चीज़ कॉमन है कि मवाहिद था, कलमा पढ़ता था। जब सारे निकल गए और एंड पर वो रह गए कचरा जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा या जो अल्लाह को नहीं मानते थे, उस वक्त फिर वो हसरत करेंगे कि वो वक्त आने वाला है जब कहेंगे ये काफिर, काश हम मुसलमान होते। तो मैं उस जुमले पे हमेशा हर साल दौरे कुरान में भी कहती हूँ, अल्लाह वो तो वहाँ कहेंगे काश, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो आज भी मुसलमान हैं। तो मुसलमान कभी भी दूसरी तरफ नहीं जाता। सारी बात का खुलासा ले लें, इसको एक छोटे से क्लिप में डाल दें, अकीदा सिफारिश या अकीदा शिफात का खुलासा क्या है? नंबर एक, अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर कोई नबी, कोई फरिश्ता, कोई वली सिफारिश नहीं कर सकेगा, पहली बात। दूसरी बात, सिफारिश करने वाला सिर्फ इसके लिए सिफारिश करेगा जिसके लिए अल्लाह ताला की इजाज़त होगी। बात समझ गए? किसके लिए और कब, ये लिख लीजिए ना, व्हेन एंड फॉर होम। तीसरी बात, मुशरिक के लिए कतन कोई सिफारिश नहीं होगी। ये तीन पिलर्स हैं इस्लामी अकीदा शिफात के, फिर दोहरा देती हूँ शायद आपको कोई मिस हो गया हो। पहली बात है, अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर कोई नहीं कर सकता। दूसरी बात क्या है, सिर्फ अल्लाह की इजाज़त होगी तब होगा, यानी करनी तो है पर कब करनी है, व्हेन एंड वेयर एंड होम। तीन लफ्ज़ लिख लेना, कब, कहाँ और किसकी। तो ये सारी चीज़ें होंगी अल्लाह के हुक्म से। और तीसरी बात है कि मुशरिक की कोई सिफारिश नहीं है, इसके अलावा इर्द गिर्द बाकी चीज़ें बेकार हैं। अल्लाह से दुआ करें। अब आप मुझे बताइए कि आपको ये बात समझ आ गई, पॉइंट क्लियर है? इसके अंदर कोई बहाम, कोई शक, कोई शुबा है तो आप पूछ सकते हैं।
देखिए
एक ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, इनका सवाल ये है कि मुशरिक की तो बात सबको समझ आती है, बिदत का क्या करें। देखिए एक वो शख्स है जिसने बुराई शुरू की, उसको कहते हैं बिदती। आज के दौर में जो कर रहे हैं ना समझी और लाइलमी की वजह से, ये मुबतदी हैं। लिखें एक लफ्ज़ है बेदती, जिसने रस्म ईजाद की। मिसाल देती हूँ कि जैसे नबी सल्लम ने फरमाया काबा में पहला बुत जिस शख्स ने ला कर रखा, अमर बिन लोहई उसका नाम था, हदीसों में आता है। गालिबन अल्लाह ने आपको मेराज के मौके पर दिखाया कि वो शख्स जहन्नुम में इस तरह लोटनियाँ ले रहा है कि उसकी सारी अंतड़ियाँ बाहर निकली हुई हैं जिस्म से, और वो उसके गिर्द गधे की तरह चक्कर लगा रहा है। तो आपने बताया कि ये अमर बिन लोहई है क्योंकि इसने बुत परस्ती की इब्तदा की थी, पहला बुत हरम में लाकर ये रखता है। अब देखिए वहां से समझे, पहला बुत लाकर उसने हरम में रखा, ये बन गया बिदती, ठीक है। उसके बाद एक एक करके 360 बुत आ गए, तो वो जो 359 बुत थे ना बाद में, वो लोग कौन थे? वो मुबतदी थे। बात समझ गए? तो ये बहुत प्लस पॉइंट बताने लगी हूँ, आप सब भी सोच सकते हैं, और आप अपने इल्म की बुनियाद पर इन बातों को आगे अगर करें, आज के दौर में जो आपकी बहनें, जो आपके भाई हमारे मुसलमान दीन के नाम पे नित नए काम करें ना, शुक्र कीजिए कि ये बिदती से बढ़कर मुबतदी हैं, जिन बातों को नस्ल दर नस्ल कर रहे हैं। मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप चाहें तो मैं आपको अगले वीक में स्केड्यूल करके तो बिदत का टॉपिक भी पढ़ा दूँ, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। समझ गए? ये कहनी चाहिए, जिसको इंग्लिश में आप कहते हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट है आज के मुसलमानों को, जो पिछले से मौजूद रस्म को कर रहा है। बहुत सारी नाम लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। रबी अव्वल की देखें बिदतें, रजब के महीने में जो कुछ किया जा रहा है। अब ये बड़ी अहम बात है, अब हर दौर में बिदत इन्वेंट होती रहती है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, अभी रबी अव्वल गुजरा है, आप सब ने भी देखा होगा, पिछले 10 साल का रबी अव्वल आपको मुझे याद होगा कमोबेश, हो सकता है इससे पीछे भी याद हो। आज के दौर में जो कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर रबी अव्वल में हो रहा है, ये इससे पिछले साल में नहीं होता था। हर साल एक नई रस्म शुरू होती है। अभी चंद दिन पहले मुझे किसी ने एक वीडियो भेजी, यानी डिसगस्टिंग, अगर किसी को इसका मतलब आ जाए तो, कि जिसको कह के वॉमिट हो जिस चीज़ को देकर, गंदी गलीज चीज, और वो क्या है कि दाढ़ियाँ हाल हो लिए, दाढ़ियों वाले सर पे पगड़ियाँ, कमीज़ें उतरी हुई हैं, नीचे धोतियाँ सी पहनी हुई हैं, और यकीन करें इस टेबल से आधे जगह पे रखें तो केक इतना बड़ा रखा हुआ है, छुरियाँ पकड़ी हुई हैं, और केक को काटने की कोशिश कर रहे हैं, बेचारों से छुरी भी नहीं चल रही, दो लोग मिलके कर रहे हैं, सारे लोग इर्द गिर्द ऐसे खड़े हैं जैसे किसी की सालगिरह का केक कटता है। और जो ही उन्होंने कोशिश बसियार के बाद वो केक काटा, तो पास खड़े तालियाँ पीट रहे हैं, हैप्पी बर्थडे या रसूलुल्लाह। अगर आपने देखी है, मुझे बताइए, आज से 10 साल पहले रबीउल अव्वल के मौके पे केक काटने की बिदत थी, तो फिर जिसने अब इन 2-4 सालों में ये जुर्म किया ना, वो बिदती है। अब अगले सालों में जो इनको देखकर केक काटेंगे वो मुबतदी है। बात समझ गए? तो बिदती की तो तौबा कबूलनी है, हदीस में आता है उससे तो हाथ मिलाना जुर्म है। बिदती तो एक किस्म का कह लीजिए कि सरकार के नाम पर खाना जंगी करने वाला शख्स है। बात समझ गए? किसी मुल्क के अंदर देखिए, पाकिस्तान का एक लॉ है, और कोई पाकिस्तान के इस लॉ को रिजेक्ट करके अपनी मर्जी का लॉ ले आए कि जी इसको निकालना है उसको डालना है, आप उसको क्या कहेंगे? तो ये छोटी बात नहीं है, राइट? इसलिए हमेशा याद रखिए, दीन के नाम पे नए काम से डरे। अभी चंद दिन पहले एक और किसी ने तस्वीर भेजी, साथ कमेंट्स होते हैं, लोग मुझसे ज़्यादा चीज़ें इस सॉर्ट की शेयर करते हैं, क्या आप इसके बारे में क्या कहते हैं? और वो क्या था, मुझे नहीं पता किसकी कब्र है, अब आम किसी मुसलमान की कब्र है, और पूरी कब्र के ऊपर एक सांचा सा बनाकर, वो जिसको नक्शे नालेन कहते हैं ना, जूती का नक्श बना हुआ है कि किसी मुसलमान के मरने पे उसके लवाहिकीन ने कब्र के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती का नक्श बना दिया, और गोया कि ये नबी के पाँव के नीचे। और यहाँ आपके इस मुल्क में फैसलाबाद के घर में उस्तादों में एक हमारी हैं साथी, बहुत अच्छी, उनकी गवाही है, मैंने तो नहीं देखा, कि वो कहती हैं कि मैं उनके घर जब गई तो घर भी था बेसमेंट बड़ा सा, और बेसमेंट में जब उतरे तो पूरी छत के ऊपर बड़ा सा नक्शे नालेन बना हुआ था। और वो कहते हैं जब हमारा कोई काम रुक जाता है तो हम इस जूती के साए में खड़े आके दुआएं करते हैं, ये भी देते हैं। तो याद रखिए, इट्स वेरी वेरी डेंजरस। जी देखिए, इनका सवाल बहुत अच्छा है کوئی جہج پہ جاتا ہے، کوئی عمرے پہ جاتا ہے، یا آپ خود کسی تکلیف میں ہیں اور آپ کسی کو کہتے ہیں، یا آپ کسی کو سفر پہ جاتا دیکھ کے کہتے ہیں مجھے سفر کی دعاؤں میں یاد رکھیں، اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں کل کے سیشن میں یہ بات آئی تھی کہ شرط ایک ہے کہ وہ شخص زندہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سے بعد میں جا کر دعا کیوں کرائی گئی بارش کی؟ کہ حضرت عباس زندہ تھے، اللہ کے نبی فوت ہو چکے تھے، حالانکہ اس وقت بھی مدینہ شہر میں اللہ کے نبی کی قبر مبارک موجود تھی. ٹھیک ہے، زندہ شخص سے آپ دعا کرا سکتے ہیں، آپ کے خاندان میں کوئی بزرگ ہے، نانی ہے، دادی اماں میرے لیے دعا کر، لیکن دعا ہی کرا لینا اور خود کچھ نہ کرنا یہ کلا کی شو. ان شاء اللہ اس پہ بھی ہمیں ایک سیشن لینے کی ضرورت ہے، دعا کے اندر کس طرح شرک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب کوئی فوت ہو گیا، اب اس کی قبر پہ جا کے آپ کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، تو وہ تو اس جہان سے آگے جا چکے ہیں.